ओंकार का विचार करते हुए ओंकार को प्रतीक मान करके और ओंकार के आलंबन को तिरस्कार करके उसके ध्येय रूप का वर्णन किया। जैसा पहले बतलाया, ध्यान के लिए किसी न किसी आलंबन को सामने करना पड़ता है, किसी न किसी उपाधि के आधार पर ही ध्यान की संभावना है। अब ओंकार को प्रधानता जो दी गई है वो किस दृष्टि से दी गई है, इसको आगे के खंड में बतलाते हैं। पूर्वास्य मात्रा जागर्ति जागरितं द्वितीया स्वप्नं तृतीया सुषुप्तिश्चतुर्थी तुरीयम्। पूर्वास्य मात्रा, इसकी जो पहली मात्रा है अर्थात अ, वह जागृत को बतलाती है। द्वितीय स्वप्नम, दूसरी जो मात्रा उ है वह स्वप्न को बतलाती है। तृतीय सुषुप्ति ही, तीसरी जो मात्रा मकार वह सुषुप्ति को बतलाती है। चतुर्थी तुरीयम्, और जो चौथी नाद मात्र की जो मात्रा है वह तुरीय अवस्था को बतलाती है। इस प्रकार से अकार उकार मकार और इन तीनों रूपों में रहने वाला ओंकार वो किसी न किसी अपने प्रत्यक्ष अनुभव को आधारित करके अन्य चीजों से संबंधित होता है। तो ध्यान के लिए तो उसके अंदर देवता रूप, वेद रूप, तार रूप, विष्णु रूप, ब्रह्मा रूप, प्रकाश और महादेव रूप ये सब बतलाए। अब यह जो ध्यान का विषय है इसके अपरोक्ष रूप का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि अपरोक्ष रूप होकर के यही ज्ञेय है। ध्यान में हमको किसी न किसी उपाधि को लेके चलना पड़ता है, तब प्रश्न होता है कि उपाधि उपाधि एक जैसी, क्योंकि उपाधि सच्ची है नहीं, उपाधि कल्पित है, और कल्पित चीजें सब एक जैसी होती हैं। अब जरा विचार करते हैं, कल्पित चीजें एक जैसी होने पर भी कोई कल्पना सफल होती है, फल को उत्पन्न करती है, कोई कल्पना निष्फल होती है, फल को उत्पन्न करती नहीं। गणित शास्त्र में ये बहुत प्रसिद्ध है, किसी सवाल को हल करना है, उस सवाल को हल करने के लिए किसी संख्या को एक तरफ जोड़ दो और फिर घटा दो, तो जितना जोड़ा उतना ही घटाया, परंतु वो सवाल सरलता से हल हो गया। सचमुच में न उसमें तुमने जोड़ा न घटाया, लेकिन जुड़ गया की कल्पना करने से सवाल आसानी से हल हो गया। मोटी भाषा में जरा बतला देते हैं, को सात से गुणा करना है। पुराने लोगों के लिए नहीं कह रहे हो, पुराने लोग 59 समझ लेना, पुराने लोगों को तो 19 का पहाड़ा याद होगा तो झट 19 सत्य कर देंगे। चलो 59 ले लो सभी जने, 59 को 7 से गुणा करना है। कागज पेंसिल हो गए तब तो कर लोगे, अब बिना कागज पेंसिल के करना है तो 59 को 60 मान लो। तो 59 को जब तुमने 60 माना तो झट से 60 को 7 से गुणा करने में 420 कोई भी कर लेगा। अब तुमने उसके अंदर 7 जोड़ दिए हैं, जितने जोड़ दिए हैं उतने ही घटा दो। तो जोड़ना और घटाना दोनों काल्पनिक है, फिर एक ही क्यों जोड़ा? तो एक जोड़ने से सवाल हल हो जाता है, और कोई संख्या जोड़ोगे तो झट से सवाल हल होगा नहीं। इसी प्रकार से अनेक जगहों के ऊपर कल्पना करते हो और फिर कल्पना को हटा देते हो, सवाल हल हो जाता है। वहां दूसरी कल्पना करो तो सवाल हल नहीं होता। अब कहोगे कि जी हम तो गणित नहीं जानते, बहुत से गणित से बड़ा घबराते हैं। तो अन्य स्थल बतलाते हैं जहां कल्पित होने पर भी फल में भेद है। मान लो तुमको दूर में कोई चमकती चीज दिखी, तुमने उसको हीरा समझा, जब तुम उसके पास पहुंचे तो तुमने देखा कि हीरा तो कांच के अंदर पड़ा हुआ है, उस कांच के ऊपर तो किसी बत्ती की बाहर वाली की रोशनी पड़ रही थी, हीरा कांच के अंदर है वहां रोशनी थी नहीं, इसलिए तुमको जो चमकता दिखा था वो तो कांच पर पड़ने वाली रोशनी थी, वो तो हीरा नहीं था। परंतु उस कांच के भीतर वही हीरा पड़ा हुआ है। तो हीरे को उठा लियो। यद्यपि यहां पर कांच के चमक में तुमको हीरे का भ्रम हुआ, परंतु वहां जाने पर हीरा मिल गया। दिखा तो कल्पना का, परंतु मिल गया सच्चा हीरा। अगर उसकी जगह उस कांच के अंदर हीरा नहीं होता या दिया होता जिसके प्रकाश के कारण कांच चमक रहा होता, तुम उसको हीरा समझ के जाते तो तुमको हीरा मिलता नहीं। तुमने जिसको हीरा समझा था वो हीरा तो नहीं था, परंतु वहां जाने पर हीरा मिल गया। इसी को कहते हैं संवादी। है तो कल्पित, परंतु कल्पित होने पर भी जो कल्पना की उसका फायदा हो गया, अथवा विचार करो, तुमने दूर से धुआं देखा, दूर से देखा तो धुआं दिखाई दिया, तुम वहां पहुंचे तो पता लगा कि वो धुआं नहीं था, वहां तो किसी बटलोई में पानी उबल रहा था तो वो भाप थी। तुमने जिसको धुआं समझा वो धुआं नहीं भाप थी। ठीक समझ गए भाई सब जने? लेकिन धुआं देख के तुम पहुंचे किस लिए थे? वहां आग होगी ताप लेंगे, तो भाप के अंदर तुमको धुएं की तो कल्पना हुई, परंतु जब वहां पहुंचे तो तुमको आग मिल गई ना, अर्थात संवाद हो गया। जो तुमने समझा था, तुमने हीरा समझा था, हीरा मिल गया तो संवाद है। वो भ्रम कल्पना, परंतु जिसको तुमने गलत समझा था वहां पहुंचने पर चीज तो मिल गई। इसी प्रकार तुमने जिसको धुआं समझा था वो धुआं नहीं था, इसलिए भ्रम था कल्पित था, परंतु वहां पहुंचे थे तुम आग के लिए, आग तो मिल गई ना, तो संवादी हो गया। और अगर तुमने जिसको धुआं समझा था वो धूली पटल था, धूल उड़ रही थी, तो वहां पहुंचने पर आग मिलेगी नहीं। जैसे हीरा समझ के गए परंतु दिया था इसलिए हीरा मिला नहीं, जहां नहीं मिलता है उसको विसंवादी कहते हैं, किसी पाप को कर लेता है। अब पाप की निवृत्ति से गंगा का आचमन करता है। गंगा के जल का आचमन करने से पाप की निवृत्ति शास्त्र में बताई है। वो बोतल से गंगा जल समझ करके गंगा जल को लेता है कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरा पाप निवृत्त हो जाएगा। बाद में उसकी घरवाली कहती है, अरे जी इसके ऊपर तो पहले का गंगा जल लिखा हुआ है तो ये नलके का पानी या कुएं का पानी। तो नलके का पानी पीने से तो कोई पाप की निवृत्ति होगी नहीं। तो तुमने समझा था इस पानी को पीने से पाप निवृत्त हो जाएगा, परंतु निवृत्त नहीं हुआ। परंतु मान लो वो कहती है इसमें गंगा जल नहीं था, गोदावरी का जल था। तो गोदावरी के जल के पान से भी पाप की निवृत्ति बताई है। तो तुमने जिसको गंगा जल समझा था वो गंगा जल नहीं था, इसलिए है तो कल्पना है तो भ्रांति, परंतु वो गोदावरी का जल था वो भी पवित्र करने वाला है, तो तुम्हारा पाप तो हट गया। संवादी, और अगर वो नलके का जल था कुएं का जल था तो पाप नहीं हटा, वहां भी संवादी। अब तीनों का फर्क थोड़ा थोड़ा समझ लेना। जहां तुमने हीरा समझा था वो प्रत्यक्ष से समझा था, वहां भ्रम प्रत्यक्ष में था, परंतु जाने पर सफल हो गया, इसलिए ये प्रत्यक्ष का दृष्टांत है। प्रत्यक्ष में भी कल्पना कभी कभी सच्चे फल को दे देती है। जहां तुमको धुआं समझ में आया था थी भाप, वहां तुमको आग का ज्ञान अनुमान से हुआ था। दिखा तो तुमको धुआं था और धुएं से तुमने अनुमान से जाना था वहां आग होगी। अब वहां जाने पर जब तुमको आग मिल गई तो ये अनुमान से जो तुमको ज्ञान हुआ वहां पर भी कभी कभी चीज मिल जाती है, संवादी हो जाता है। गंगा जल से शुद्धि होती है ये शास्त्र से पता लगता है, शास्त्र से ही पता लगता है कि गंगा जल से शुद्धि होती है। अब तुमने गंगा जल जिसको समझा था वो गंगा जल नहीं था, इसलिए ये शास्त्रीय भ्रम था। परंतु वो गोदावरी का जल निकल गया, इसलिए वहां पर वो भी संवादी हो गया, क्योंकि गोदावरी के जल से शुद्धि भी शास्त्र ने बताई है। इस प्रकार प्रत्यक्ष में भी संवादी हो जाता है, अनुमान में भी संवादी हो जाता है, शब्द में शास्त्र में भी संवादी हो जाता है। कल्पना तो सब जगह एक जैसी है, परंतु कहीं कल्पना सफल हो जाती है कहीं सफल नहीं होती। इसी प्रकार से उपासना के लिए जो भी उपाधि ली जाती है वो उपाधि कहीं तो तुमको ज्ञान तक पहुंचा देती है, सफल हो जाती है, कोई उपाधि तुमको ज्ञान तक नहीं पहुंचाती है, इसलिए यदि तुम ज्ञान रूपी फल चाहते हो तो तुम्हारे लिए वो फल देने वाली नहीं रही। जिसको दूसरा फल चाहिए, इसलिए प्रारंभ में कहा था कि ओंकार की उपासना किसके लिए सफल है। यद्यपि अन्य फलों को भी ओंकार देता है, लेकिन अन्य फल तो दूसरी उपासनाओं से भी हो जाते हैं। परंतु यदि तुम ज्ञान चाहते हो तो उसके लिए तो ओंकार की उपासना ही प्रधान है। अब जिसको ज्ञान नहीं चाहिए उसके लिए ओंकार की उपासना जिस फल को उत्पन्न कर सकती है उस फल को उत्पन्न नहीं करने के कारण सफल नहीं होगी, परंतु जिसको ज्ञान चाहिए उसको दूसरी उपासनाएं सफल नहीं होंगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए साहस चाहिए हो, ज्ञान के मार्ग में कमजोर लोगों का काम नहीं है, ये तो बड़े साहस का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। कल आप लोगों को सुनार के लड़के की बात बतलाई थी, कितनी हिम्मत का काम उसने किया था। ऐसा नहीं समझ लेना कि खाली लड़की ही हिम्मत का कारण है, वो तो दृष्टांत बतलाया था। वस्तुतः राजा की कन्या क्या है, तो परमात्मा रूपी राजा की कन्या परमात्मा से होने वाली जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही कन्या है। परमात्मा की कन्या ब्रह्माकार वृत्ति, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति बिना ब्रह्म के हो नहीं सकती। जैसे घटाकार वृत्ति बिना घट के नहीं हो सकती, मठाकार वृत्ति बिना मठ के नहीं हो सकती, वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बिना ब्रह्म के नहीं हो सकती। अतः उसकी पुत्री है। अब इस ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त करना कौन चाहता है, तो सुनार का लड़का। सोना हमारे यहां सबसे शुद्ध धातु माना गया है। पीतल की गिलास में पानी पियो तो उसको मट्टी से मांजो तब साफ मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। चांदी की गिलास में पियो तो धोने मात्र से शुद्ध माना जाता है, और सोने के गिलास में पियो तो सोना वायु मात्र से शुद्ध हो जाता है। ठीक जैसे यदि तुम कपड़ा पहन लो सूती तो जल से धो के शुद्ध होता है, परंतु यदि ऊन का कपड़ा पहना है तो ऊर्णा वाते न शुद्धति। ऊन के कपड़े को थोड़ा सा हवा लगा दो तो वो शुद्ध हो जाता है। उसको पानी से धो एक बार पहन के तब शुद्ध होगा ऐसा नहीं है। तो सोना शुद्ध पदार्थ माना जाता है। इसी प्रकार से जीव का जो मन है वो सत्व गुण से बना है, इसलिए मन स्वरूप से शुद्ध है, सत्व गुण से बना है इसलिए। परंतु ऐसा बना होने पर भी, सोने से रात दिन काम करने पर भी, अब आगे जो बात कहेंगे कोई बुरा नहीं मानना हो, सुनार को हमारे यहां संस्कृत में पश्यतोहर कहते हैं। तुम छाती पर बैठ करके नजर लगा के देखते रहो और फिर उसमें से वो माल गायब कर देगा, देखते हुए गायब कर देगा। तो यद्यपि वो रात दिन व्यवहार तो कर रहा है शुद्ध चीज से, परंतु उसके अंदर कार्यगत अशुद्धि है। ठीक इसी प्रकार से मन शुद्ध होने पर भी हम उसको रात दिन रजोगुण तमोगुण के कार्यों में लगाते रहते हैं तो कार्यगत अशुद्धि है। अब ऐसा कार्यगत अशुद्धि वाला जो मन है ये चाहता है कि हमको ब्रह्माकार वृत्ति की प्राप्ति हो जाए। बड़ा दुखी होता रहता है, कैसे हमको ब्रह्म ज्ञान होवे, ब्रह्माकार वृत्ति बने। अब जैसे वहां पर उसको किसी सुथार ने, खाती ने कहा, मैं तेरे को विष्णु बना तो नहीं सकता हूं, लेकिन विष्णु के जैसा रूप और वाहन दे देता हूं, इसलिए तू क्या हो जाएगा, कल्पित विष्णु हो जाएगा। सच्चा विष्णु तो नहीं है, कल्पित विष्णु है, परंतु कल्पित विष्णु की तरह व्यवहार करते हुए विष्णु पुराण इत्यादि का अध्ययन करके सच्चे विष्णु स्वरूप को अपने अंदर आरूढ़ कर ले। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी अब तक जो प्रणव की उपासना बतलाई उसके अंदर अभी तुमने अपने अहम रूप से उसकी प्रतिष्ठा तो नहीं की, परंतु सारे देवता, सारे वेद, ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकाश इत्यादि सर्व रूप से तुमने ओंकार की उपासना की। तो जैसे उसके दो हाथ लकड़ी के लगा दिए झूठे मूठे, जैसे उसको उड़न खटोला बना करके गरुड़ का वाहन दे दिया, वैसे ही यहां ओंकार के अंदर सर्वरूप की भावना कर रहे हो, परंतु सर्वरूप की भावना करते हुए ब्रह्म का भाव तुम्हारी वासनाओं में, तुम्हारे अंतकरण में वासित होता जाता है। नतीजा क्या होता है, जब घोर आपत्ति का समय आता है, आक्रमण हो गया था तो घोर आपत्ति का समय आ गया ना, अब सुनार का पता लग जाएगा।